آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ مرکز نے 2025-26 کے لیے ربی فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس نے وارانسی پنڈت دین دیال اپادھیائے کثیر رخی پروجیکٹ کو بھی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے مرکزی سرکار کے ملازمین کے لیے مہنگائی بھتے میں 3% اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ بی جے پی کے رہنما نائب سنگھ سینی کل ہریانہ کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت نے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے تبادلہ خیال میں مثبت اور تعمیری رول ادا کیا ہے۔ نائجیریا میں ایندھن کے ایک ٹینکر میں دھماکے سے 94 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور کرکٹ میں بنگلورو میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا پہلے دن کا کھیل بارش کی وجہ سے نہیں ہو پایا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے آج مارکیٹنگ سیزن 2025-26 کے لیے ربی فصلوں کی کم از کم امدادی قیمتوں ایم ایس پی میں اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں لیے گئے کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے کسانوں کی منافع بخش قیمتوں کو یقینی بنانے کے لیے ربی کی فصلوں کی ایم ایس پی میں اضافہ کیا ہے۔
ربی مارکیٹنگ سیزن کے لیے ایم ایس پی اپروو ہوا ہے دیٹ دی پرائز شوڈ بی ایٹ لیسٹ 50% ابو دی کاسٹ، وہ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ اس آدھار پہ جو 6 ربی کراپس ہیں، گیہوں کے لیے 150 روپے بڑھایا گیا ہے، بارلے یعنی جو کے لیے 130 روپے بڑھایا گیا ہے، گرام یعنی چنے کے لیے 210 روپے بڑھایا گیا ہے، مسور کے لیے 275 روپیز بڑھایا گیا ہے، اور سرسوں کے لیے 300 روپے کی بڑھوتری کی گئی ہے، اور سیفلاور یعنی کسم اس کے لیے 140 روپیز بڑھوتری کی گئی ہے۔
جناب ویشم نے کہا کہ سرکار نے اتر پردیش میں گنگا ندی پر ایک نئے ریل اور سڑک پل سمیت وارانسی پنڈت دین دیال اپادھیائے ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹ کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا، لاجسٹکس کی قیمتوں میں اور تیل کی درآمدات میں کمی آئے گی، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج بھی کم ہوگا۔ اس پروجیکٹ سے تعمیراتی مرحلے میں تقریباً 10 لاکھ دنوں کے لیے براہ راست روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ پر 2642 کروڑ روپے خرچ ہوں گے اور اسے 4 برسوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ مرکزی کابینہ نے مرکزی سرکار کے ملازمین کے مہنگائی بھتے ڈی اے اور پینشن یافتگان کی مہنگائی امداد ڈی آر میں 3% اضافے کو منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ڈی اے اور ڈی آر میں اضافے سے مرکزی سرکار کے 49 لاکھ سے زیادہ ملازمین اور 64 لاکھ سے زیادہ پینشن یافتگان کو فائدہ ہوگا۔ اس سے سرکاری خزانے پر سالانہ 9448 کروڑ روپے کا بوجھ بڑھے گا۔
آج کیبنٹ نے ڈی اے اور پینشنرز کے لیے ڈی این ایس ریلیف اس کو 3% بڑھایا ہے، اور ٹوٹل 9448 کروڑ اینولی ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کے امپلائیز کے پے چیک میں ایڈ ہوگا۔ اس کا کیلکولیشن وغیرہ سب سٹینڈرڈ ایک فارمولہ سے ہوتا ہے، آل انڈیا کنزیومر پرائس انڈیکس فار انڈسٹریل ورکرز، اس کے حساب سے اس کا کیلکولیشن ہوتا ہے۔ تو دیوالی سے پہلے سب کیندر سرکار کے سبھی کرمچاریوں کو ہاردک ابھینندن اور بدھائی۔ اور
بی جے پی کے سینئر رہنما نائب سنگھ سینی کل دوسری مرتبہ ہریانہ کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب کل پنچکولہ کے شالیمار گراؤنڈ میں ہوگی۔ اس تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل آج دن میں جناب سنگھ نے قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب ہونے کے بعد گورنر بندارو دتاتریہ سے ملاقات کی اور ریاست میں حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کیا۔ حالیہ انتخابات میں جناب نائب سنگھ نے وزیر اعلی کے امیدوار کے طور پر چناؤ لڑا تھا اور ان کی پارٹی کو شاندار کامیابی ملی، لہذا آج ان کا قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب ہونا طے تھا۔ ہریانہ کے کارگزار وزیر اعلی نائب سنگھ سینی نے آج قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب ہونے کے بعد کہا کہ 24,000 نوجوانوں کی تقرری کے امتحان کے نتائج کا कल ऐलान किया जाएगा। कारगुजार वजीर आला ने कहा कि नौजवानों को रोजगार फराहम करना उनकी सरकार की तरजीह है। ये बात काबिल जिक्र है कि उन उम्मीदवारों को जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जानिब से चुने गए हैं, उन्हें तकर्रुरनामे दिए जाने से कबल इजाफी वक्त दिया गया है ताकि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जनाब अब्दुल्ला और उनकी कौंसिल के वजरा को हलफ दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। सकीना इट्टू, जावेद राणा, जावेद डार और आजाद उम्मीदवार सतीश शर्मा ने वजरा के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने अवाम की खिदमत के तहत उनकी कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए जनाब अब्दुल्ला और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहल में आज मोरितानिया पहुंच गई हैं। उन्हें वहां पुरजोश इस्तकबालिया दिया गया। मोरितानिया के सदर मोहम्मद ओल्द गजवानी ने नुआकशोत ओमटोंसी बैन अल-अक़वामी एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि सदर जमहूरिया मुर्मू मोरितानिया के एक रोजा दौरे के दौरान कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस्लामी जमहूरिया मोरितानिया के सदर मोहम्मद ओल्द गजवानी के साथ बाहमी मीटिंग करेंगी। वो मोरितानिया के वजरा के साथ वफद की सतह की बातचीत में भी हिस्सा लेंगी। मोहतरमा मुर्मू एक कम्युनिटी तकरीब में भी शिरकत करने वाली हैं, जहां वो भारतीय नजाद लोगों से मुलाकात करेंगी। बाद में शाम को सदर जमहूरिया तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में मलावी के लिए रवाना हो जाएंगी। नवाकशोत मोरितानिया से मयूषा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
नीति आयोग कल नई दिल्ली में मेथेनॉल से मुतालिक दो रोजा सेमिनार और नुमाइश 2024 का इनेकाद करेगा। इस तकरीब का एहतमाम अमरीका के मेथेनॉल इदारे के इश्तराक से किया जा रहा है। इसमें प्रोजेक्टों की पेशरफ्त, मसनूआत, मेथेनॉल की पैदावार से मुतालिक तहकीक व तरक्की के इकदामात और उसके इस्तेमाल और दुनिया भर में इससे वाबस्ता तकनीकी पेशरफ्त को उजागर किया जाएगा। इस सेमिनार का असल मकसद दुनिया में तवानाई की मुंतकली के हवाले से मेथेनॉल के रोल और ग्रीन शिपिंग में कार्बन के कम से कम इखराज वाले ईंधन के तौर पर मेथेनॉल के फरोग को नुमाया करना है। नई दिल्ली में इस तकरीब से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नीति आयोग के एक रुकन डॉक्टर वी के सरस्वत ने कहा कि मेथेनॉल एक ऐसा भरपूर ईंधन है जिसे बायोमास, कोयले और काबिल तजदीद जराए समेत वसीतर अंदरूनी मुल्क अशिया से तैयार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये जेरे जमीन ईंधन से बहुत कम खर्च वाला ईंधन है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क में साफ सुथरी तवानाई की मुंतकली के मामले में एक कलीदी रोल अदा करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज इस्लामाबाद में सरबराह ने हुकूमत की शंघाई ताउन तंजीम SCO काउंसिल की मीटिंग को नतीजा खेज करार दिया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि इस मौके पर नतायज पर मबनी 8 दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि भारत ने तबादला ख्याल में एक मसबत और तामीरी इश्तराक किया है। वजीर खारजा ने कहा कि भारत के नुक्ते नजर से 8 अहम निकात थे, जिनमें एक कुर्रयर्ज, एक कुंबा, एक मुस्तकबिल के नजरिए पर मुजाकरात शामिल हैं। उन्होंने DPI का जिक्र किया और कहा कि डिजिटल तौर पर सबकी शमूलियत SCO में इश्तराक से मुतालिक तरीक़ेकार का एक हिस्सा बन चुकी है और अक़वामे मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए SCO मिशन लाइफ से तहरीक हासिल कर रही है। डॉ जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम की सदारत की जिम्मेदारी संभालने पर रूस को भारत की जानिब से नेक ख्वाहिशात भी पेश की। बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA असेंबली का 7वां इजलास 3 नवंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। इसमें बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद के इकदामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसका असर तवानाई तक रसाई, सिक्योरिटी और रिवायात पर होता है। इजलास में मेंबर मुल्कों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी ताकि वो शमसी तवानाई को इख्तियार कर सकें और सोलर लगाने के काम में तेजी लाने की गरज से फंड जमा कर सकें। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर और ISA के सदर प्रहलाद जोशी ने कहा कि दुनिया भर के रहनुमा आईएसए असेंबली में जमा होंगे ताकि बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई इख्तियार किए जाने को फरोग दिया जा सके।
India has taken significant strides in progressing the global climate action under the Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Owing to our intent and action, India is today recognized globally for its leadership in renewable energy, climate action and sustainability. With India and France, ISA is also moving forward. Today the ISA holds observer status at the United Nations General Assemblies, highlighting its global significance with 120 members and signatory countries.
सुप्रीम कोर्ट ने फजाई आलूदगी से मुतालिक उसके हुक्म पर अमल न करने के बिना पर हरियाणा और पंजाब की सरकारों की नुक्ताचीनी की है। ये फजाई आलूदगी डंठल वगैरह जलाने से फैलती है। जस्टिस अभय एस ओका की सरबराही वाली बेंच ने फजाई मियारात से मुतालिक कमीशन CAQM को हिदायत दी है कि हरियाणा सरकार के उन अहलकारों के खिलाफ ताजीरी कार्रवाई की जाए जो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कोई कदम उठाने में नाकाम रहे हैं। अदालत आलिया ने इस सिलसिले में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने को कहा है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को भी हिदायत की गई है कि वो बुध को अदालत में मौजूद रहें और अदालत को बताएं कि उसके हुक्म पर अमल न करने वाले अहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार मुल्क में म्यारी माल बनाने वाले एक ऐसे माहौल पर काम कर रही है कि तैयार किए गए माल में किसी भी किस्म की कोई खामी ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि क्वालिटी कंट्रोल के दायरे में आने वाली मसनूआत की तादाद बढ़कर 732 हो गई है जबकि 10 साल पहले इसकी तादाद 106 थी। जनाब गोयल ने यह बात आज नई दिल्ली में एक सिम्पोजियम से खिताब करते हुए कही। नाइजीरिया में ईंधन के टैंकर में धमाके से कम 94 अफराद हलाक और 50 लोग जख्मी हो गए। ये वाकया कल रात शिमाली जिगावा में पेश आया। मकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि हादसे का शिकार होने वाले बहुत से लोग टैंकर के करीब मौजूद थे। ये लोग सड़क पर गिरा हुआ ईंधन जमा करने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर ने टैंकर का कंट्रोल उस वक्त खो दिया जब वो कानो से यूबे रियासत के शहर गुरु जा रहा था। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस तरह के वाकयात नाइजीरिया में आमतौर पर होते रहते हैं जहां ईंधन की कीमतें औसत आमदनी के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं, खासतौर पर गरीब देही इलाकों में। इससे कबल सितंबर में नाइजीरिया की रियासत में एक ईंधन के टैंकर की मुसाफिरों और मवेशियों को ले जाने वाली लॉरी से टकराने के बाद 59 अफराद हलाक हो गए थे। आज लबनान के जनूबी शहर नबातिया में इसराइल के फजाई हमलों में एक मकामी मेयर समेत 6 अफराद हलाक हो गए। इसराइली फौज ने आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाया। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने नबातिया इलाके में दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया और जेरे जमीन बुनियादी ढांचे को नीस्तो नाबूद कर दिया। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से लबनान में जंगबंदी की तजवीज को मुस्तरद किए जाने के बाद ये हमले किए गए हैं। इससे मुतालिक एक वाकये में हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने शिमाली इसराइल के कमेल की जानिब से कई रॉकेट दागे हैं। क्रिकेट में बेंगलुरु के एम चन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले पहले टेस्ट का पहला दिन बारिश की नजर हो गया। कल खेल जल्द शुरू होने का इम्कान है और कल ही टॉस होगा। भारत बांग्लादेश से 2-0 से जीत हासिल करके जबकि न्यूजीलैंड श्रीलंका से 0-2 से शिकस्त के बाद इस मैच में आमने सामने होंगे। भारत आलमी टेस्ट चैंपियनशिप में फिलहाल सरी फहरिस्त है जबकि न्यूजीलैंड छठे मकाम पर है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकज ने 2025-26 के लिए रबी फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा कर दिया है। उसने वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कसीर रुखी प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। काबीना ने मरकजी सरकार के मुलाजिमीन के लिए महंगाई भत्ते में 3% इजाफे को मंजूरी दे दी है। बीजेपी के रहनुमा नायब सिंह सैनी कल हरियाणा के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने इस्लामाबाद में शंघाई तावुन तंजीम के तबादला ख्याल में मस्बत और तामीरी रोल अदा किया है। नाइजीरिया में ईंधन के एक टैंकर में धमाके से 94 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए हैं। और क्रिकेट में बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का पहले दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो पाया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।